एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास की, स्टेंडाल का क्लासिक ल रूज ए ले नोर, यानी द रेड एंड द ब्लैक।
जी, एक ऐसा उपन्यास जिसने यथार्थवाद मतलब रियलिज्म की जैसे नींव रखी।
बिल्कुल, और इसके लेखक स्टेंडाल, जिनका असल नाम मारी हेनरी बेल था, वो एक बड़ी ही दिलचस्प, बल्कि कहूँ तो उथल पुथल वाले समय में जिए।
हाँ, सोचिए जरा, फ्रांसीसी क्रांति देखी उन्होंने, फिर नेपोलियन का पूरा दौल, उसका उठना उसका गिरना, और फिर बॉर्बन राजशाही की वापसी।
वो सब उथल पुथल उन्होंने अपनी आंखों से देखी, और यही माहौल, यही तनाव हमें इस उपन्यास में महसूस होता है। ये 1830 में छपा था
और इसका एक सबटाइटल भी है ना, 19वीं सदी का क्रॉनिकल।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस जमाने के फ्रांस का एक तरह से कहें तो आईना है।
सही कहा।
और ये शीर्षक लाल और काला, ये सिर्फ रंग तो है नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। लाल रंग जैसे सेना की वर्दी का, नेपोलियन के उस दौर के जुनून का, क्रांति की वो आग, महत्वाकांक्षा।
और काला?
काला है पादरी वर्ग के चोगे का रंग, रूढ़ीवाद, जो बॉर्बन वापसी के बाद हावी था, और हाँ, पाखंड का भी प्रतीक।
तो इन्हीं दो रंगों, दो दुनियाओं के बीच फंसा है हमारा हीरो।
हाँ, जूलियन सोरेल। कहानी फ्रांस के एक छोटे से मतलब प्रांतीय शहर वेरियर से शुरू होती है। जूलियन एक मामूली बढ़ई का बेटा है, समाज में कोई ऊंची हैसियत नहीं,
लेकिन अपने परिवार से बिल्कुल अलग।
जी, उसके भाइयों को, पिता को लकड़ी के काम में रुचि है, लेकिन जूलियन वो किताबों में खोया रहता है। शरीर से शायद उतना मजबूत नहीं, पर दिमाग कमाल का तेज, और याददाश्त तो गजब की।
कहते हैं पूरी लैटिन बाइबल जुबानी याद थी उसे।
हाँ, और उसका हीरो कौन? नेपोलियन। वो भी तो साधारण पृष्ठभूमि से उठकर सम्राट बना था। जूलियन भी वही सपना देखता है। तो उसे मौका मिलता है शहर के मेयर महाशय द रेनाल के बच्चों को पढ़ाने का।
जी, ट्यूटर बन जाता है।
और जूलियन के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वो इसे देखता है सामाजिक सीढ़ी पर अपने पहले कदम की तरह।
और यहीं उसकी मुलाकात होती है मेयर की पत्नी मादाम द रेनाल से।
हाँ, और यहीं से स्टेंडाल हमें जूलियन के मन की परतें दिखाना शुरू करते हैं।
कैसे?
मेरा मतलब है, मादाम द रेनाल को लेकर उसकी क्या सोच है शुरू में?
देखिए, शुरू में तो वो मादाम द रेनाल के प्रति जो आकर्षण महसूस करता है, उसे भी एक एक रणनीति की तरह लेता है।
रणनीति? प्यार को?
हाँ, उसे लगता है कि इस अमीर ऊंचे तबके की महिला को जीतना, ये उसकी अपनी जीत होगी। उन अमीर आदमियों पर उसकी बौद्धिक विजय, एक तरह का कर्तव्य है ये उसकी महत्वाकांक्षा के लिए।
कितना ठंडा हिसाब किताब है ये तो।
बिल्कुल, लेकिन यही कहानी में मोड़ आता है। जूलियन जो अभी बहुत जवान है, अनुभवहीन है, और मादाम द रेनाल जो लगभग 30 की हैं, एक शांत, शायद थोड़ी उबी हुई जिंदगी जी रही थी, उनके बीच सच में कुछ हो जाता है।
हाँ, उनके बीच एक गहरा, एक सच्चा जुनून पनपने लगता है। ये अप्रत्याशित है दोनों के लिए। मादाम द रेनाल अपने अंदर ऐसी भावनाओं को महसूस करती हैं जो शायद पहले कभी नहीं जागी थी।
ये उनके लिए एक तरह का जागरण है ना?
जी बिल्कुल। और जूलियन, वो जो सब कुछ नाप तोल कर चल रहा था,
उसका क्या होता है?
वही तो दिलचस्प बात है। वो भी खुद को ऐसी भावनाओं में बहता हुआ पाता है जिनका उसकी योजनाओं में कोई स्थान नहीं था। वो खुद हैरान है, क्या ये सचमुच प्यार है?
तो उसके मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है।
हाँ, जबरदस्त कश्मकश। एक तरफ ये असली दिल से महसूस किया जाने वाला रिश्ता है, और दूसरी तरफ उसकी वो ठंडी सोची समझी महत्वाकांक्षा।
और मादाम द रेनाल का प्यार तो बिल्कुल निस्वार्थ लगता है ना, दिल से।
हाँ, उनका प्यार एकदम सच्चा है, जबकि जूलियन लगातार जूझता रहता है प्यार या तरक्की।
ये दिल का प्यार बनाम दिमाग की गणना,
हाँ,
ये थीम तो पूरे उपन्यास में चलती है।
हाँ, लेकिन छोटे शहर में ऐसी बातें भला कहाँ छुपती हैं।
अच्छा,
पता चल जाता है लोगों को,
कानाफूसी शुरू हो जाती है।
हाँ, और फिर एक गुमनाम चिट्ठी आती है जो उनका राज खोल देने की धमकी देती है। तो फिर मादाम द रेनाल की इज्जत पर बात आ जाती है, तो उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जूलियन को मजबूरन वेरियर छोड़ना पड़ता है।
कहाँ जाता है वो?
वो बिसेंकॉन शहर जाता है और वहाँ एक धार्मिक सेमिनरी में दाखिला ले लेता है पादरी बनने की ट्रेनिंग के लिए।
तो लाल वर्दी का सपना पीछे छूटा, अब काले चोगे की दुनिया।
जी, और सेमिनरी, स्टेंडाल दिखाते हैं कि वो जगह तो जैसे पाखंड का स्कूल है।
पाखंड
मतलब, वहाँ जूलियन देखता है छोटी भक्ति, दिखावा, अंदर ही अंदर की जलन, आगे बढ़ने की होड़। उसे समझ आता है कि यहाँ टिकना है तो उसे भी नाटक करना पड़ेगा, अपनी असली सोच छुपानी होगी।
तो वो ये सीख लेते हैं?
हाँ, वो पाखंड की कला में माहिर हो जाता है। यही उसकी मुलाकात होती है एबी पिराड से। वो सेमिनरी के डायरेक्टर हैं, सख्त हैं, लेकिन जूलियन की प्रतिभा को पहचान लेते हैं।
अच्छा, तो वो उसकी मदद करते हैं?
हाँ, एबे पिराट को उसकी प्रतिभा दिखती है, हालांकि वो उसकी दुनियावी महत्वाकांक्षा को लेकर थोड़े शंकित भी रहते हैं। पर उन्हीं की सिफारिश पर जूलियन को पेरिस जाने का मौका मिलता है।
पेरिस, फ्रांस के समाज का केंद्र?
जी, उसे वहां एक बहुत ही रसूख वाले अमीर आदमी मार्की दे लामोल के निजी सचिव की नौकरी मिल जाती है। अब जूलियन सीधा फ्रांस के हाई सोसाइटी के बीच है। वॉरियर बहुत पीछे छूट गया।
पेरिस का समाज, स्टेंडाल यहां भी आलोचना करने से नहीं चूकते, है ना?
बिल्कुल नहीं। वो दिखाते हैं कि पेरिस का ये ऊंचा तबका बाहर से जितना चमकीला है, अंदर से उतना ही कह सकते हैं खोखला। लोग बुद्धिमान हैं, मजाक उड़ाने में माहिर हैं, पर नैतिक रूप से कमजोर, अपनी जिंदगी से उबे हुए।
और जूलियन वो कैसे निभाता है वहां?
वो अपनी मेहनत और तेज दिमाग से मार्की को इम्प्रेस तो कर लेता है, लेकिन उसे हर पल याद दिलाया जाता है कि वो बाहर का है, उसकी पैदाइश मामूली है।
तो वो जन्म बनाम योग्यता वाली लड़ाई और तेज हो जाती है वहां। हाँ,
और इसी माहौल में उसकी जिंदगी में एंट्री होती है मार्की की बेटी माथिल्ड द लामहोल की।
अच्छा, माथिल्ड, वो कैसी है?
19 साल की है, सुंदर है, बहुत बुद्धिमान भी है, लेकिन अपनी इस ऊंची सोसाइटी की जिंदगी से बुरी तरह बोर हो चुकी है। वो इतिहास की किताबों में वीरता, जुनून, एडवेंचर खोजती है।
और उसे जूलियन में कुछ ऐसा ही नजर आता है, कुछ अलग?
हाँ, उसे जूलियन में वो चीज दिखती है जो उसके आसपास के लड़कों में नहीं है। एक तरह की निम्न वर्ग की ऊर्जा, एक खतरा, कुछ असली सा, वो उसकी तरफ खींचती है।
लेकिन ये रिश्ता भी सीधा साधा नहीं है, क्यों?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक अजीब सा खेल बन जाता है, बुद्धि का खेल, इच्छा शक्ति का, कौन किस पर हावी होता है। जूलियन को शक होता है कि कहीं माथिल्ड उसका मजाक तो नहीं उड़ा रही।
तो वो फिर अपनी चाल चलता है?
हाँ, वो ठान लेता है कि इसे भी जीत कर रहेगा। फिर से वही गणना, वही महत्वाकांक्षा। ये मदाम द रनाल वाले प्यार से कितना अलग है।
वो दिल का प्रेम था और ये
साफ तौर पर दिमाग का प्रेम है। इसमें गर्व है, अहंकार है, सामाजिक जीत की इच्छा है। स्टेंडाल यहां कमाल का मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं। हम जैसे जूलियन के दिमाग के अंदर झांक सकते हैं।
और वो क्या चाल चलता है माथिल्ड को जीतने के लिए?
वो जानबूझकर माथिल्ड में जलन पैदा करने की कोशिश करता है। वो एक दूसरी महिला के साथ नजदीकी बढ़ाने का नाटक करता है।
और ये काम कर जाता है?
हाँ, माथिल्ड पूरी तरह उसके वश में आ जाती है। उसे जूलियन से जबरदस्त प्यार हो जाता है, और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि माथिल्ड गर्भवती हो जाती है।
क्या, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक मामूली सचिव और पेरिस के सबसे बड़े रईसों में से एक की बेटी।
हाँ, और माथिल्ड बहुत हिम्मत वाली है। वो सीधे अपने पिता मार्की को जाकर सब सच बचा देती है।
मार्की का क्या रिएक्शन होता है? वो तो आग बबूला हो गए होंगे।
शुरू में तो हाँ, बहुत गुस्सा होते हैं। उनकी बेटी और एक मामूली ट्यूटर से सेक्रेटरी बना लड़का। लेकिन माथिल्ड अपनी बात पर अड़ी रहती है, और शायद मार्की भी कहीं ना कहीं जूलियन की काबिलियत को मानते थे, तो आखिरकार वो मान जाते हैं
शादी के लिए।
हाँ, और सिर्फ मानते ही नहीं, बल्कि जो वो करते हैं वो जूलियन के वाइल्डेस्ट सपनों से भी परे हैं।
क्या करते हैं वो?
मार्की न सिर्फ शादी के लिए हाँ कहते हैं, बल्कि जूलियन को फौज में एक ऊंचा पद दिलवाते हैं, उसे एक उपाधि देते हैं, शेवेलियर जूलियन सोरेल द लावेर्न, और अच्छी खासी जमीन जायदाद भी।
अरे बाप रे, रातों रात किस्मत पलट गई।
बिल्कुल, एक झटके में जूलियन सोरेल समाज के शिखर पर, उसकी बरसों की महत्वाकांक्षा जैसे पूरी हो गई। उसने पेरिस को जीत लिया।
क्या गजब की छलांग लगाई उसने। ऐसा लगता है जैसे उसने वो वर्ग भेद की दीवार तोड़ी दी। एक बड़ाई का बेटा अब फ्रांस के सबसे ऊंचे तबके का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना?
नहीं, यहीं से कहानी का सबसे त्रासद मोड़ आता है।
क्या होता है?
ठीक जब लगता है कि अब सब ठीक है, जूलियन की जीत पक्की है, तभी मार्की दे लामोल को एक चिट्ठी मिलती है।
चिट्ठी किसकी?
मादाम द रेनाल की।
मादाम द रेनाल की? उन्होंने क्यों लिखी चिट्ठी?
ये चिट्ठी उन्होंने अपने नए बहुत ही कट्टर किस्म के पादरी के जबरदस्त दबाव में आकर लिखी थी। उस पादरी ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि जूलियन के बारे में सच बताना उनका धार्मिक कर्तव्य है।
और उस चिट्ठी में क्या लिखा था?
उसमें जूलियन को एक बहुत ही शातिर, मतलबी और हृदयहीन इंसान बताया गया था, कि वो सिर्फ अपनी तरक्की के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करता है, उनके जज्बातों से खेलता है।
ओह, ये तो सब कुछ तबाह कर देने वाला था।
बिल्कुल, वो चिट्ठी पढ़ते ही मार्की का जूलियन पर से सारा भरोसा उठ जाता है। वो फौरन शादी से इनकार कर देते हैं, जूलियन को दिया गया पद उपाधि सब वापस ले लेते हैं।
यानी जूलियन का बनाया हुआ पूरा महल एक पल में ढह गया।
हाँ, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सालों की मेहनत, सारी चालें, सब बेकार।
इस बार जूलियन क्या करता है? क्या वो फिर कोई ठंडी चाल सोचता है?
नहीं, इस बार नहीं। इस बार कोई हिसाब किताब नहीं। इस बार उसके अंदर का दबा हुआ जुनून, अपमान का जहर और शायद मादाम द रेनाल के प्रति वो जो विश्वासघात महसूस करता है, सब एक साथ फट पड़ता है।
वो भावनाओं में बह जाता है
पूरी तरह। वो बिना सोचे समझे गुस्से और निराशा के आवेश में पिस्तौल खरीदता है, सीधा वेरियर वापस जाता है।
वेरियर मादाम द रेनाल के पास।
हाँ, और चर्च में जब मादाम द रेनाल प्रार्थना कर रही होती हैं, जूलियन उन पर गोली चला देता है।
क्या? ये तो उसने क्या कर दिया? स्टेंडाल यहाँ कमाल करते हैं। वो दिखाते हैं कि आखिरकार जूलियन का पतन उसकी गणनाओं से नहीं
बल्कि एक अनियंत्रित मानवीय भावना के विस्फोट से होता है। उसका दिल उसके दिमाग पर हावी हो जाता है और वही उसे ली डूबता है।
उसकी सारी सावधानी, सारा पाखंड एक पल के जुनून में खत्म।
जी, जूलियन को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है।
क्या?
मादाम द रेनाल मरती नहीं है। गोली लगने के बावजूद वो बच जाती हैं, धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं।
अच्छा, फिर तो जूलियन बच सकता है। मुकदमा चलता है।
हाँ, मुकदमा शुरू होता है। सब सोचते हैं शायद अब जूलियन माफी मांगेगा, रहम की अपील करेगा।
लेकिन वो जूलियन सोरेल है, वो ऐसा क्यों करेगा भला?
बिल्कुल नहीं करता। वो दया की भीख मांगने से साफ इनकार कर देता है। बल्कि इसके उलट वो अदालत में जूरी के सामने एक ऐसा भाषण देता है जो सबको चौंका देता है।
क्या कहता है वो?
वो एक तरह से विद्रोह कर देता है। वो कहता है कि आप लोग मुझे मेरे किए अपराध के लिए सजा नहीं दे रहे, आप मुझे मेरी हैसियत, मेरे वर्ग के लिए सजा दे रहे हैं।
ओह, वो सीधे सामाजिक व्यवस्था पर उंगली उठाता है।
हाँ, वो लगभग चीख कर कहता है, सज्जनों, मेरा असली गुनाह ये नहीं कि मैंने गोली चलाई। मेरा असली गुनाह ये है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ जिसने अपनी गरीबी से ऊपर उठने की जुर्रत की, जिसने अच्छी तालीम पाकर आप अमीरों के समाज में घुसने का दुस्साहस किया। आप मुझमें उस पूरी नौजवान पीढ़ी को सजा देना चाहते हैं।
वाह, ये जूलियन का शायद पहला और आखिरी पूरी तरह ईमानदार पल है। कोई मुखौटा नहीं।
जी, वो अपनी मौत को भी समाज के खिलाफ एक बयान बना देता है। व्यक्ति बनाम समाज की लड़ाई का ये चरम बिंदु है।
फिर क्या होता है? सजा तो मिलती है उसे।
हाँ, उसे मौत की सजा मिलती है। जेल में अपने आखिरी दिनों में उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। चीजें साफ नजर आने लगती हैं।
मातिल दाती है उससे मिलने।
हाँ, मातिल दाती है। वो अब भी उससे अपने तरीके से प्यार करती है। उसे बचाने के लिए अपना सारा पैसा, सारा असर इस्तेमाल करना चाहती है।
लेकिन क्या अब इन चीजों का जूलियन के लिए कोई मतलब रह गया है?
शायद नहीं। सबसे अहम मुलाकात होती है मादाम द रेनाल से।
वो भी आती हैं जेल में गोली लगने के बाद।
हाँ, वो आती हैं और वो जूलियन को पूरी तरह माफ कर चुकी हैं। और उन्हीं से बात करके जूलियन को आखिरकार सच्चाई समझ आती है।
क्या सच्चाई?
उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का एकमात्र असली गहरा और खुशी देने वाला अनुभव सिर्फ मादाम द रेनाल के लिए उसका प्यार ही था। बाकी सब, उसकी महत्वाकांक्षा, पेरिस की वो चमक धमक, मातिल्ड के साथ वो दिमागी कसरत, सब झूठ था, दिखावा था, खोखला था।
पर ये समझने में बहुत देर हो गई।
हाँ, बहुत देर। वो मौत की सजा के खिलाफ कोई अपील नहीं करता, बहुत शांत रहता है और पूरी गरिमा के साथ गिलोटीन का सामना करता है।
और मादाम द रेनाल?
जूलियन की मौत के सिर्फ 3 दिन बाद वो भी मर जाती हैं, दुख से, टूटे हुए दिल से, जैसे उसके बिना जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी।
क्या त्रासद अंत है! ये कहानी हमें कितना कुछ सोचने पर मजबूर करती है। महत्वाकांक्षा की कीमत क्या है? क्या एक समाज जो पैदाइश को काबिलियत से ऊपर रखता है, वो प्रतिभा को ऐसे ही जाया कर देता है?
बिल्कुल, जूलियन में ऊर्जा थी, बुद्धि थी। अगर समाज का ढांचा अलग होता या उसे सही राह मिलती तो शायद उसका अंजाम कुछ और होता।
स्टेंडाल ने जूलियन के जरिए उस पूरे समाज पर, उसके पाखंड पर, चाहे वो चर्च का हो या मीरों का, कितनी तीखी टिप्पणी की है।
जी हाँ, और प्यार के कितने अलग अलग रंग दिखाए। मादाम द रेनाल का वो निस्वार्थ जुनून वाला प्यार, और मातिल्ड का वो गर्व और खेल वाला प्यार, दिल बनाम दिमाग।
और उनके लिखने की शैली, वो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के मास्टर थे। किरदारों के मन के इतने अंदर तक ले जाना, उनकी उलझने दिखाना, विडंबना का इस्तेमाल, कमाल का था।
हाँ, और उनका वो कहना कि उपन्यास एक आईना है जिसे सड़क पर लेकर चला जाता है, वो इस किताब पर कितना सही बैठता है।
बिल्कुल, ये आईना समाज की हर अच्छी बुरी सच्चाई दिखा देता है, और शायद इसीलिए करीब 200 साल बाद भी ये कहानी हमें अपनी सी लगती है ना?
हाँ, क्योंकि महत्वाकांक्षा, सफलता के पीछे भागना, सामाजिक दबाव और इन सब के बीच अपनी असलियत को बचाए रखने की कोशिश, ये सवाल तो आज भी उतने ही अहम है।
शायद ये कहानी याद दिलाती है कि बाहरी कामयाबी के चक्कर में हम वो असली खुशी न खो दें जो अक्सर सादे सच्चे इंसानी रिश्तों में मिलती है।
और ये भी कि समाज चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी कर लें, इंसान की आत्मा, उसका जुनून कहीं न कहीं उन दीवारों से टकराता जरूर है, अंजाम चाहे जो भी हो।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।